परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में दंडवत करते हुए कथा के प्रसंग में शत्रुघ्न राजा सुमति का च्यवन ऋषि के आश्रम से आगे नीलगिरी पर्वत के पास प्रस्थान हो रहा है। प्रस्थान के ही प्रक्रम में राजा रत्नग्रीव का आख्यान आता है। राजा रत्नग्रीव नीलांचल पर्वत के पास में स्थित है। अपने प्रजा के पालन में तत्पर है। उनके राज्य की ऐसी स्थिति है, सब लोग अपने अपने कर्म में लगे हुए हैं। ब्राह्मण अपने ब्रह्म कार्य में लगे हुए हैं, कहीं व्यापार नहीं करते। जो क्षत्रिय वृत्ति के लोग हैं वह शासन परायण है, वैश्य वृत्ति के लोग व्यापार में लगे हुए हैं, जो चतुर्थ वृत्ति वाले हैं वो भी अपने कार्य में सबके सब लगे हुए हैं। राजा का शासन कहीं से स्खलित नहीं है, धर्म पूर्वक राजा शासन का पालन करते हैं। राज्य में बड़ी प्रजा सुखी है। प्रजा तब दुखी होती है जब प्रजा का एक भी व्यक्ति अपने कर्तव्य को नहीं करता और फल की अपेक्षा रखता है, तो दूसरे को प्रताड़ित करके फल लेना चाहता है, दबाव बनाना चाहता है और कर्म को छोड़ता है। कर्तव्य बुद्धि जब न रहे और खाली फल बुद्धि रहे तो वहां कोलाहल और हिंसा की स्थिति बनती है। लेकिन जहां कर्तव्य बुद्धि है कि हम अपने कर्म को करते रहेंगे, फल मिले या न मिले, वहां पर कोई ऐसी भयावह स्थिति सर्जित नहीं होती है। वहां कहीं किसी को कोई कष्ट नहीं होता। यह स्थिति है राजा की। राजा ने सोचा अब मुझे तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि एक जगह रहने से काम नहीं चलता, थोड़ा तीर्थ यात्रा इत्यादि जब हम करेंगे तो हमको कुछ और अधिक ज्ञान होगा। और वानप्रस्थ आश्रम तीसरा आश्रम है अपने यहाँ। चार आश्रम है, ब्रह्मचर्य 25 वर्ष तक, उसके बाद 26 से 50 तक गृहस्थ है, 51 वर्ष से 75 वर्ष तक वानप्रस्थ है, और वानप्रस्थ 75 के बाद संन्यास की स्थिति आती है। तो आया है कि चौथे पण मुनि कानन जाही, नहीं कानन तो कानन जाही। दो अर्थ है कानन का। कानन मतलब जंगल में, जब चौथा अवस्था आए, चौथी अवस्था, तो व्यक्ति को जंगल की तरफ जाना चाहिए। गृहस्थ आश्रम को छोड़कर के वानप्रस्थ और वानप्रस्थ को छोड़कर के संन्यास की तरफ से अपने मन के वृत्तियों को संन्यास में लगाना चाहिए। लिप्सा रहित कर्मों का एकदम त्याग हो जाना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो वो व्यक्ति घर में रह करके दुखी होते हैं, क्योंकि उनकी लिप्सा उसमें बढ़ जाती है। वैसे तो पुराणों ने बहुत सारे मार्ग बतलाए हैं कि ये नहीं कर सकते हो तो यहां रह करके ये करो, वो सब है। तो उनकी इच्छा हुई कि मैं राज्य छोड़ करके और अपने पुत्र को राज्य समर्पित करके मैं जंगल की तरफ जाऊं। इतने में ही रात्रि को स्वप्न में एक ब्राह्मण मिलते हैं और वो ब्राह्मण से अपनी बात निवेदित कर रहे हैं। और जैसे बात उनकी पूरी होती है वैसे उनकी निद्रा खुल जाती है। अब वह स्वप्न था उनका, लेकिन स्वप्न तो सत्य होता है या नहीं होता है इसको तो विचार करना पड़ेगा, क्योंकि स्वप्न जो है कभी सत्य भी होते हैं, कभी सत्य नहीं भी होते हैं। तो स्वप्न के अनुसार जब उनकी नींद खुल जाती है, प्रातः काल वो उठ करके राज कार्य करना प्रारंभ करते हैं, तो कुछ ही देर में वो पतले कृशकाय, जिनका शरीर पतला दुबला है, वह ब्राह्मण उन्हें दिखाई देते हैं और उनसे वो कहते हैं, महाराज श्री, अब मैं चाहता हूं कि राज्य काज छोड़ करके मैं चलूं, लेकिन जाऊं तो कहां जाऊं, किस तीर्थ में जाऊं, मुझे ऐसा कोई उपाय बतलाइए कि पुनः मुझे गर्भ में न जाना पड़े, ऐसा तीर्थ बतलाइए, क्योंकि आप ब्राह्मण देवता हैं, आप विचरण करते हैं, आप तीर्थों से यात्रा करके आ रहे हैं, इसलिए मुझे कोई ऐसा तीर्थ बताइए जिस तीर्थ पर जाने के बाद हमें गर्भ में न जाना पड़े, ऐसा उन्होंने ब्राह्मण से कहा। ब्राह्मण ने कहा, भाई ये तो बड़ी गजब की बात है, हम आपको कौन से तीर्थ की बात बताएं? तीर्थों में भगवान राम जी की जन्मस्थली है अयोध्या, और भगवान राम के जप और उनके आराधना के पश्चात प्राणी को सब कुछ प्राप्त हो जाता है, लेकिन अन्य तीर्थ भी उससे कम नहीं है। सरजू, तापी, हरिद्वार, अवंती, बिमला, यही नहीं, यदि भगवान श्री कृष्ण की द्वारिकापुरी को लें तो द्वारिकापुरी की भी महिमा कम नहीं है। वहां गोमती नदी बहती है और उसका जल साक्षात ब्रह्म स्वरूप ही है, और वहां जो जाता है उसको मृत्यु नहीं होती है, वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, उसमें स्नान ही बड़ा फलदायी है, और जो उसमें स्नान करता है उस पर कलयुग का प्रभाव नहीं रहता है। तो जब कलि का प्रभाव नहीं रहेगा तो आप वैसे ही मुक्त रहोगे, और वहां जो पत्थर है वो भी चक्र जैसे होते हैं, वो चिन्हित होते हैं, उनकी भी पूजा का बहुत महत्व है, और जो मनुष्य चक्र चिन्ह को धारण करते हैं वो मुक्त हो जाते हैं, और वहां भगवान त्रिविक्रम निवास करते हैं, इसलिए द्वारिकापुरी भी अच्छी है। साथ ही स्यमंतक नाम का भी तीर्थ है, जो कई प्रकार के हत्याओं से मुक्त कर देता है। यदि चर्चा करें तो कुरुक्षेत्र भी कम नहीं है, और उससे अधिक कहें तो जो वाराणसी पुरी है भगवान शिव की, वहां माँ अन्नपूर्णा और विश्वनाथ विराजते हैं, जो मुक्ति को प्रदान करते हैं, और उससे अधिक कहें तो तीर्थों में एक नीलगिरी पर्वत है, जिस नीलगिरी पर्वत पर लोग जाते हैं तो नीलगिरी का पद हमेशा सागर धोते रहता है, वहां की ऐसी महिमा है। मैं गया था तो मैंने देखा एक भील जाति थी जो निम्न जंगली जाति है, और वहां मैंने उनको देखा कि वो चार हाथ से समन्वित हैं, उनके चार चार हाथ हैं, और शंख चक्र और गदा पद्म धारण किए हुए हैं। मुझे यह आश्चर्य हुआ कि ये जंगली जाति भला चार भुजा वाली कैसे हो गई। तो मैं वहां जाकर के उनसे पूछा कि प्रभु, ये आप लोग जो है चतुर्भुज में ये जंगली प्राणी कैसे विचरण कर रहे हो? तो वहां जाकर के एक व्यक्ति ने बतलाया कि आप नहीं जानते हो, यहाँ पिंडदान का बहुत बड़ा महत्व है, यहाँ जो पिंडदान करता है वह साक्षात विष्णु स्वरूप को प्राप्त कर जाता है, उसके पितर तृप्त हो जाते हैं। कहा कि कैसे, हमको बतलाओ। उन्होंने कहा कि सुनो, एक बार की बात है, यहाँ एक जामुन का वृक्ष था, और उस जामुन के वृक्ष पर के नीचे एक बालक रहता था, और वह प्रतिदिन उसके फलों को खाया करता था, एक दिन वह ऊपर चढ़ा और ऊपर चढ़कर के शिखर पर देखा कि एक देवता विराजमान है जिनकी सूर्य के समान कांति है और वहां मड़ियां लगी हुई है और अंधकार को नाश कर रहे और वहां पुरुषोत्तम भगवान विराजमान है। वह वहां गया, जैसे ही भगवान का दर्शन किया, दर्शन करने के बाद भगवान के चरण में पड़ा। वहां देवता, गंधर्व, मुनिगण सभी भगवान के सेवा कर रहे थे, भजन कर रहे थे और सब लोग ही खुशहाल थे। भगवत कृपा का लाभ साक्षात उन्हें दिख रहा था। मतलब क्या है, हम मंदिर में भी रहें और हमें अनुभूति ना हो कि हम मंदिर में हैं, हमें घर की याद आए तो शायद हम सुखी नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारे शरीर का और मन की स्थिति का विरोधाभास रहता है। और यदि हम मंदिर में हैं और यह ध्यान लगा रहे हैं कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर है तो हमें उस आनंद की प्राप्ति होगी। मतलब हम तन से भी जुड़े हुए हैं और मन से भी जुड़े हुए हैं, तो जब तन और मन दोनों ही जुड़ेगा तब हमें प्रसन्नता आएगी, और खाली तन यहाँ रहेगा, मन अन्यत्र रहेगा, तो वो प्रसन्नता हमें नहीं आ सकती है। प्रसन्नता की ये मुख्य लक्षण है। तो वो हमेशा वैसा अनुभव कर रहे थे और जैसे ही वो बालक गया, वहां देखा एक प्रसाद चावल का कण गिरा हुआ था, वो उसको उठा करके खाया, महाप्रसाद। जैसे ही उसने प्रसाद को ग्रहण किया, भगवान के स्वरूप का वह हो गया, चार भुज स्वरूप उसका हो गया, जिसको हम भाव स्वरूप्य कहते हैं। मुक्ति का एक स्वरूप है भाव स्वरूप्य। हम जिसकी आराधना करते हैं, आराधना करते करते हमको उसी का स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि उसके स्वरूप का ध्यान करते हैं और जैसा ध्यान करेंगे उसी तरह हम बनने की चेष्टा करते हैं। सुमिरत तुम ही हो ही जाई। तो जिस वो कीड़े का प्रसंग बतलाया है कि जो भमरी होती है कीड़े को पकड़ के लाती है और ला करके मिट्टी में भर देती है, उसको उसके पहले वो इतने जगह काटती रहती है कि उसको उसका स्मरण होता रहता है भैंसे, और भनभन भनभन वो आवाज करती रहती है उसके पीछे मिट्टी में लगा करके। तो कुछ दिन बाद वो उसी के अंडाकार का हो जाता है कीड़ा और उसमें से उसी का वो स्वरूप निकलता है। तो ये कीट यथा सुपेशकृत आया है, जैसे कीड़ा जो है दूसरे को ले आता है, भर देता है और वो उसको काटता है, जिसको काटता है वो उसी का चिंतन करता है, तो चिंतन करते करते वह उसी के आकार को प्राप्त कर लेता है। तो वैसे ही वह चिंतन करते करते जो जिसका चिंतन करता है वह उसी के समीपता को प्राप्त करता है। हम जिसका भजन करेंगे हमको वही प्राप्त होगा। मतलब सामान्य सी बात है कि हम ऑटो रिक्शा वाले को बुलाएंगे तो आएगा, कार वाले को बुलाएंगे, कार पर चढ़ने की इच्छा होगी तो कार वाले को बुलाएंगे तो कार वाला आएगा, लेकिन हम में उतनी योग्यता होनी चाहिए कि हम उसको दक्षिणा की व्यवस्था कर दें। तो वो दक्षिणा क्या है, अपनी निष्ठा है, अपनी शक्ति है, अपना